ہیلو اینڈ السلام علیکم. امریکہ کے شہر ڈیلس سے میں ہوں اعزاز سید, پروگرام ٹاک شاک کے ساتھ. آج کے ٹاک شاک کے خصوصی شو میں ہم موجود ہیں علامہ جاوید احمد غامدی کے ہمراہ, جو کہ ممتاز عالم دین ہیں. ان کی سوچ اور ان کی فکر عام پاکستانی علماء یا عام مذہبی علماء سے بڑی مختلف ہے, بڑے پروگریسو سوچ کے حامل ہیں. پاکستان میں صرف مذہبی امور پہ نہیں, ریاست کے معاملات کے اوپر بھی بڑی گہری فکر اور نظر رکھتے ہیں, اور ان کی فکر اور ان کی سوچ ایسی تھی جس کی وجہ سے انہیں پاکستان سے جلا وطن ہونے پر مجبور کیا گیا. 2009 سے پاکستان سے عملی طور پر جلا وطن ہے, لیکن اپنے فکر اور اپنے نظریے کے ساتھ قائم ہیں آج بھی. پہلے ملائیشیا میں رہے اور اب ملائیشیا سے نقل مکانی کر کے امریکہ میں آ گئے ہیں. تو غامدی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا بھی, اور اتنی اچھی میزبانی کا بھی بہت بہت شکریہ.
آپ کی عنایت ہے, آپ تشریف لائے.
اچھا غامدی صاحب, پاکستان کے امور آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں, یہاں پر آپ کا ایک سینٹر بھی ہے, تو میں چاہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک پرپیچوئل انسٹیبلٹی ہے, عدم استحکام ہے, مستقل عدم استحکام ہے. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب آئے ریسنٹ پاسٹ میں, پیپلز پارٹی اس سے پہلے آئی, پھر نواز شریف صاحب آئے, اور نواز شریف صاحب کے بعد عمران خان صاحب آئے. تو ان تینوں ادوار میں ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے کوئی استحکام نہیں رہا, زیادہ تر اس میں رول جو ہے وہ فوج کا رہا. کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان؟
میرے نزدیک پاکستان کو اس کی پیدائش کے وقت سے دو بیماریاں لاحق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ملٹری کے پاس اس ملک کا اقتدار جانا ہے یا لوگوں کے پاس, یعنی ملٹری اور سول کی کشمکش ہے جو 3-4 سال کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی. دوسرے مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش. یہ آپ کے علم میں ہے کہ سلطنتوں کا دور پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم ہونا شروع ہو گیا تھا, اس کے متصل بعد قومی ریاست کا تصور بھی نمایاں ہوا, اور پھر دنیا میں بہت سی قومی ریاستیں قائم بھی ہوئیں. یہ سلسلہ یورپ میں تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا, لیکن ایشیا میں بھی جیسے جیسے بعض ملکوں کو آزادی ملتی گئی, قومی ریاستوں ہی کے تحت ان کے نئے نظام بنے. قومی ریاست کیا ہوتی ہے؟ قومی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص جغرافی خطے میں رہنے والے لوگ ایک قوم ہے. ان کا مذہب مختلف ہو سکتا ہے, ان کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں, ان کی نسل مختلف ہو سکتی ہے, ان کی ثقافت مختلف ہو سکتی ہے. یعنی مذہب, نسل, رنگ, ثقافت کی بنیاد پر کسی شہری میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی, وہ سب برابر کے شہری ہوں گے, اور ان کا نظم ریاست جمہوری اصولوں پر چلایا جائے گا یا جو نظام وہ اپنے لیے پسند کرے. یہ قومی ریاست کا تصور ہے. مذہبی ریاست اس کے برعکس ایک طبقے کی حکومت پر قائم ہوتی ہے. یعنی مذہبی طبقہ, وہ شیعہ علماء ہو سکتے ہیں, سنی علماء ہو سکتے ہیں, کوئی طالبان قسم کی قوم ہو سکتی ہے, ان کی حکومت قائم کر دی جائے, اس کو مذہبی ریاست عام طور پہ کہا جاتا ہے. مذہبی ریاست اور قومی ریاست دونوں یوں سمجھ لیجیے کہ مشرق و مغرب میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی مذہبی ریاست تو جب بھی قائم ہوگی تو اس میں وہ طبقہ حکومت کرے گا, اس کے لوگوں ہی کو حق حکومت حاصل ہوگا, انہی کو فیصلہ کرنے کی قوت دی جائے گی, اس میں عام شہریوں کی اس لحاظ سے شمولیت نہیں ہو سکتی, ان کی وہ حیثیت بھی نہیں مانی جائے گی. اور جس طرح کے مذہبی لوگ بالعموم بیان کرتے ہیں, وہ دوسرے درجے کے, تیسرے درجے کے شہری کی حیثیت ہی سے رہیں گے. یہ میں نے مختصر طریقے پہ بتایا کہ دونوں میں کیا فرق واقع ہوتا ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ مسلمانوں کی وہ حکومت جس میں اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے, وہ مذہبی حکومت نہیں ہوتی, وہ ایک تیسری چیز ہے, وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. یہاں مذہبی حکومت اور قومی حکومت کی کشمکش پیدا کر دی گئی, اور ہمارے علماء, ہمارے مذہبی طبقات نے یہ کشمکش ابتدا سے شروع کی, اور اس کے بعد ہر دستوری جدوجہد میں آپ اس کشمکش کو دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں قرارداد مقاصد اسی پس منظر میں منظور کی گئی, پھر اس کے بعد بہت سی دستوری دفعات اسی کے تحت ہمارے دستور کا حصہ بنی. ضیاء الحق صاحب جب اقتدار میں آئے تو بہت سی چیزیں एक बाकायदा पार्लिमानी मरहले से गुजरे बगैर भी उसका हिस्सा बन गई, बल्कि बाद इदारे कायम हो गए, जैसे
जी
वफाकी शरई अदालत
जी
है और इस नौईयत की बात
इस्लामी
नहीं होती
नजरियाती
है।
कौंसिल
इस्लामी नजरियाती कौंसिल का तस्वर तो खैर इब्तदा ही में
पहले था।
पैदा हो गया था और वो मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद भी रही। कहने का मकसद ये था कि इस कशमकश को हमने ये सूरत देने की कोशिश की कि एक जाविये से वो कौमी रियासत मालूम हो और एक जाविये से वो मजहबी रियासत मालूम हो, इन दोनों के दरमियान निकाह कराया नहीं जा सकता।
तो गांधी साहब, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? एक जमहूरी मुस्तकबिल है, एक कामयाब पाकिस्तानी रियासत का, अगर कभी हुई कामयाब तो, या आप ये समझते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ वाबस्ता नहीं हो किया जा
मेरे
सकता?
नजदीक जब तक आप इन दोनों अमराज का इलाज नहीं करते, ये अमराज लाहिक नहीं हुए, ये पैदाइशी हैं, इनका इलाज नहीं करते, यहाँ ना जमहूरियत चलेगी ना आमरियत चलेगी। उसके तजुर्बात हो चुके हैं, यहाँ कई कई साल तक हुए हैं, 10-12 साल तक भी होते रहे, तो कोई चीज़ भी नहीं चलेगी।
आप नहीं ये समझते कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उसमें मिलिट्री ने दोबारा गेन किया है? नो डाउट, ये बुनियाद में आपने कह दी कि बुनियादी मसाइल में से है। अदलिया भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर नमूदार हुई है, क्योंकि अदलिया भी जिस तरह के पार्लियामान के अंदर से आवाज़ आ रही है कि एक ख़ास सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसकी कुर्बत नज़र आ रही है, और देखते हैं हम कि किस तरह एक दिन में चीज़ें बदल देती हैं। तो ये दो जो दोनों सेगमेंट्स हैं, मजहबी सेगमेंट्स के साथ मिलके, आप नहीं ये समझते कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शायद कोई नहीं है? क्या शायद हम एक किसी टाइम पे पाकिस्तान टूट भी सकता?
अगर ये कश्मकश ख़त्म नहीं होती और हमारे रियासती इदारे यानी हमारी फ़ौज, हमारी अदलिया ये दस्तूर की पैरवी नहीं करते, दस्तूर एक मिल्ली मिसाक है। मैं पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में जिस चीज़ को बहुत अहमियत देता हूँ वो 73 का दस्तूर है। ये वाहिद दस्तावेज़ है जो इस मुल्क के बका की ज़मानत दे सकती थी, दे सकती है।
लेकिन 73 के आइन में मसाइल भी तो हैं।
इसमें कोई शक नहीं है, हर दस्तूर में मसाइल होते हैं, उनको हम दूर कर सकते थे, लेकिन ना इस दस्तूर को कभी फ़ौज ने दिल से कबूल किया है और बहुत माजरत के साथ ना अदलिया ने कभी दिल से कबूल किया है। यानी वो भी हर मौके पर हर इकदाम को जायज़ करार देने के लिए तैयार रही है, और ये सिर्फ इसी वक्त नहीं है, अदलिया जस्टिस मुनीर के ज़माने से आलाकार बनी, उसमें आपको जस्टिस एमर कियानी और जस्टिस कार्नेलियस जैसे या जस्टिस भगवान दास जैसे गैर मामूली लोग नज़र आ जाते हैं, लेकिन बसियत मजमू बहुत माजरत के साथ हमारी अदलिया एक आबरू बाख्त अदलिया है।
आप नहीं समझते कि इस वक्त जो हमारी फ़ौज है या मिलिट्री है, उसने ट्रेडिशनली जो हमारी मजहबी जमातें हैं उन पे अपना पूरा कंट्रोल रखा हुआ है? तो आप मजहबी जमातों को एक अलग एंटिटी भी समझते हैं, और एट द सेम टाइम इस्टेब्लिशमेंट को भी अलग, या फ़ौज को भी अलग
नहीं, उन
एंटिटी
दोनों
समझते
के
हैं?
दरमियान हमेशा से इत्तेहाद रहा है और उसकी वजह नज़रियाती भी है। हमारी मजहबी जमातें या मजहबी रहनुमा कहिए या रिवायती मजहबी फिक्र कहिए, वो जमहूरियत को असल नहीं मानते। जमहूरियत उनके यहाँ एक हिकमत अमली की चीज़ है, यानी मजहबी हुकूमत कायम करने के लिए अगर किसी जगह जमहूरियत को सीढ़ी बनाना पड़े तो वो इसको कबूल कर लेते
तो
हैं।
बुनियादी मसला फिर मजहबी लोग तो ना हुए, बुनियादी मसला तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होगी।
दोनों है, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास बंदूक की ताकत है और मजहबी लोगों के पास लोगों के जज्बात की कुव्वत है, इसलिए कि हम एक ऐसी कौम है बर्रे सगीर के मुसलमान जो बड़ा मजहबी जज्बाती पस मंज़र रखते हैं। एक है मजहबी शौरी पस मंज़र, मजहबी इल्मी पस मंज़र, वो हमें कभी नसीब नहीं हुआ, लेकिन एक जज्बाती पस मंज़र हमारा है और उसके लिहाज से ये दोनों मिल के काम करते हैं। आप देखिए कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ उसमें दोनों में इत्तेहाद रहा, जो कुछ कश्मीर में हमने किया और उससे कश्मीर के मसले को गोया हमेशा के लिए मौत के सपुर्द कर दिया, वो भी दोनों ने मिलके किया। मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ इससे पहले वो भी दोनों ने मिलके किया, और मेरे नज़दीक जिस कश्मकश की मैं बात करता हूँ वो कश्मकश भी असल में दोनों के मफादात को अगर आप देखें तो सामने रख कर बरपा रहती है।
अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तारीखी तौर पे जमात इस्लामी का एक किरदार रहा, फ़ौज के साथ वो बड़ी हैंड इन ग्लव रही। फिर हमने देखा कि JUIF का भी एक रहा, जमीत-उलमाए पाकिस्तान जो अबै शाह अहमद दुरानी जो थे उन्होंने एक इख्तलाफ रखा, लेकिन उनकी फॉलोइंग कम थी। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो बरेलवी मकतबे फ़िक्र की जमात है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो भी सामने आई है एक मौसर قوت کے طور پر. تو آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو بریلوی مکتب فکر کی جو جماعت ہے وہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا اس کی انڈیپینڈنٹ کوئی خیالات ہیں؟
اس وقت کو تو آپ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میرے نزدیک وہ ہر حال میں ساتھ جائے گی، یعنی اگر ماضی میں بھی ساتھ رہی ہے اور اس وقت بھی ساتھ ہے اور مستقبل میں بھی ساتھ ہوگی، تو یہ ٹھیک اس قانون کے مطابق ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، جو یہاں کار فرما ہے. لیکن یہ کہ مذہبی جماعتوں میں سے کوئی جماعت پاکستان میں انتخابی سیاست کے ذریعے سے اقتدار میں آ سکتی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں. میرے نزدیک یہ ضروری ہے اور یہی وہ کریں گے ہمیشہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان ایک اتحاد پیدا ہو. کبھی اسٹیبلشمنٹ کبھی وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. میری آپ کی آرزو ہو سکتی ہے کہ کاش یہ چیزیں جمہوری راستے پر آ جائیں، لیکن مجھے فی الحال اس کے کوئی بڑے امکانات نظر نہیں آتے.
جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل آصف منیر، وہ جب آئے تو انہوں نے اناؤنس کیا، آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ نیوٹرل نہیں بھی رہے، جو پی ٹی آئی نے بھی شاید ان کو مجبور کیا جتنی زیادہ ان کی. تو ڈو یو تھنک کہ جو آصف منیر ہیں اور ان کے نیچے جو آرمی ہے وہ ٹریڈیشنل جو تھنکنگ ہے اس میں کنٹینیو کرے گی؟ کیونکہ آصف منیر اگر دیکھا جائے تو ایک ڈفرنٹ ان کا پس منظر ہے. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم اے کا جنرل نہیں آیا، پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کا ایک مذہبی پس منظر بھی ہے، حفظ بھی کیا ہوا، اور پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بندہ بھی آیا کہ جس کے بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں. تو ول ہی کنٹینیو ٹو فالو دا لائن ڈرون بائی ہز سینئرز جو پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے؟
اس کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، اس لیے کہ میں تو اندر کی خبریں نہیں رکھتا، میں باہر سے جو کچھ جانتا ہوں اس کی بنیاد پر میری رائے یہ ہے کہ اگر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا آرمی چیف اپنے باطن میں یہ فیصلہ کر کے آئے کہ مجھے اس قوم کو اور اس ملک کو اس کشمکش سے نکالنا ہے، تو پھر کہیں جا کر آپ اس سے نکلیں گے، یہ کسی ایک کے بس کی چیز نہیں.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل آرمی چیف کے پاس ہے؟
اس میں کیا شک ہے، جس کے پاس قوت ہے اسی کے پاس حل ہوگا. دیکھیے یہاں قوتیں ہی دو ہیں جو اس ملک کو کنٹرول کرتی ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ ایک اس میں سے آپ کی افواج ہیں اور دوسرے آپ کے مذہبی طبقات ہیں.
تو آپ کی ذاتی اوپینین کیا ہے، جناب آصف منیر کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے یا وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اسے نکلنا کیسے؟
نہیں، مجھے ان سے نہ تو کبھی ملنے کا موقع ملا ہے نہ کوئی ان کی چیز براہ راست دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اب تک جو میں نے ان کی کچھ تقاریر وغیرہ سنی ہیں ان سے میں یہ اندازہ نہیں کرتا کہ وہ کوئی باقاعدہ اس طرح کے تصورات رکھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک خاص سمت میں جانا چاہیے یا ہم سب کو مل کر اسے کسی جمہوری راستے پر ڈالنا چاہیے. یہ البتہ میرا حسن ظن ہے کہ وہ شاید ایک ایسے آدمی ہیں جو دستور کی خلاف ورزی کو پسند نہیں کریں گے.
تو جنرل آصف منیر کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، جو باقی پولیٹیکل ایکٹرز ہیں جن کا ایک رول ہے پاکستان کو شاید اگر کوئی درست سمت پہ ڈال سکے، ان میں اگر سب سے اہم دیکھا جائے جن کی فالوئنگ ہے، ہم کوئی مانے نہ مانے، وہ عمران خان ہے. تو عمران خان کو تو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں، عمران خان نے جب پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا تو شروع میں وہ آپ کے ساتھ بھی ملتے رہے، تو آپ کو لگتا ہے عمران خان میں پوٹینشیل ہے؟ ایک یہ کہ وہ واپس نکلیں آئیں گے اپنے کرائسس سے، اور دوسرا یہ کہ وہ واپس آئیں گے اگر وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کو کسی درست سمت لے جائیں گے، کوئی پرانی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے؟
میں عام طور پر سیاسی رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں پر اطلاقی تبصرہ نہیں کرتا، وہ میرے منصب کا تقاضا ہے. اصولی باتیں میں عرض کر سکتا ہوں، میرے نزدیک دور حاضر کی سیاسی اقدار چار ہیں، ایک جمہوریت، دوسرے قانون کی حکمرانی، تیسرے قوموں کا حق خود ارادی، اور چوتھے انسان کے بنیادی حقوق. یہ میں نے جن کا آخر میں ذکر کیا وہ اصل میں اس کے مستحق ہیں کہ سب سے پہلے ان کا ذکر کیا جائے. ان چار چیزوں کے ساتھ اگر کسی سیاسی رہنما کی حقیقی کمٹمنٹ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آدمی ہے کہ جس کا کوئی عقیدہ ہے، جس کے کوئی اصول ہیں، جس کا کوئی قاعدہ ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی ان چاروں اصولوں کے ساتھ کمٹمنٹ نظر آئی آپ؟
دیکھیں میں نے وہی عرض کر دیا نا کہ میں تو اس معیار کے اوپر ہر سیاسی لیڈر کو دیکھوں گا اور اسی کے لحاظ سے کوئی توقع بھی قائم کروں گا. میرے نزدیک इन चीज़ों के साथ, मैं इन्हें दौरे हाजिर की सियासी अकदार कहता हूँ, ये पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, मैं इनके साथ कोई गहरी कमिटमेंट किसी की भी नहीं देखता। मेरे यहाँ आम तौर पर लोगों का आना जाना भी रहता है, बात भी होती रहती है। हमारे यहाँ अभी जो सियासत हो रही है, मैं उसको एक लफ्ज़ से ताबीर करता हूँ, वो खौफ की सियासत है। यानी क्योंकि फ़ौज के पास बंदूक है, चूँकि वो कौम के मामलों को देखती रही है, उसने बार बार मुदाखलत की है, कभी बराह रास्त हुकूमत की है, कभी बिलवास्ता की है, तो सारी सियासी कुव्वतें या उसका सहारा तलाश कर रही होती हैं या उसके खौफ से इकदाम कर रही होती हैं। वो जो चीज़ है कि आपको एक ऐसी आज़ादाना फ़िज़ा मिले कि आप इन अकदार को सामने रखकर अपनी कौमी तामीर का काम करें, फिर कौमी तामीर में भी आपका मॉडल क्या है, यानी क्या आप जो कैपिटलिस्ट निज़ाम है उसके उसूलों पर काम करेंगे, क्या सोशलिस्ट निज़ाम के उसूलों पर काम करेंगे, क्या इसका कोई आपने ब्लेंड तैयार किया है जो आपकी अपनी बसीरत का शाहकार है। मैंने तो आम तौर पर सियासी रहनुमाओं से बात करके देखा है, वो इस तरह सोचते भी नहीं। इसी तरह जो मसाइल हमारे गिर्दो पेश के हैं, जैसे ईरान का एक मसला था, बड़ी हद तक वो लग रहा है कि हल हो गया, अफगानिस्तान का मसला था, अफगानिस्तान के साथ कौमी हैसियत से जो कुछ हमने किया है वो तो शायद तारीख में कभी माफ ना हो, लेकिन बहरहाल एक हद तक आप कह सकते हैं कि वो कश्मकश नहीं रही जो इससे पहले थी। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन भारत के साथ, अमेरिका के साथ, नई उभरती हुई आलमी ताकत चीन के साथ, अभी बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनमें कभी मैंने सियासी रहनुमाओं को आपके पास आकर आपके चैनल पर बैठ के कोई ऐसी पुरमज़ गुफ्तगू करते नहीं देखा कि वो डायरेक्शन दे रहे हों, रास्ता दिखा रहे हों। तो मेरा एहसास ये है कि खौफ के मारे, जैसे कभी आपने देखा होगा कि जंगल में शेर आ जाए तो इधर उधर लोग भाग रहे होते हैं और हाथ पांव मार रहे होते हैं, इस तरह की सूरत हाल है हमारे सियासी मैदान की। इसमें मैं किस पर तबसरा करूँ और किसके बारे में?
गामदी साहब, एक तरफ आपकी जो गुफ्तगू है, आप सियासतदानों से मायूस नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ आपको उम्मीद भी आर्मी चीफ से है, और तीसरी तरफ आप पाकिस्तान के आईन पर भी यकीन रखते हैं, तो ये बजाते खुद तजाद नहीं है कि हम
नहीं
उसी
देखिए,
से, उसी अतार के लोंडे से दुआ मांगते हैं
आर्मी
जिससे
चीफ से मेरी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो आए और वो आके कोई यहाँ पे निज़ाम कायम कर दें। मैं तो उनसे दस्तबस्ता दरख्वास्त ये करता हूँ, फैसला करें कि उनको नहीं आना, वो इस चीज़ को सपोर्ट करें कि यहाँ एक आइनी हुकूमत और एक दस्तूरी निज़ाम चलना चाहिए। यानी उनसे मेरी तवक्को ये है, ये नहीं है कि वो आके जैसे जनरल ज़ियाउल-हक़ साहब आए या इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ़ साहब आए वो कोई कारनामा अंजाम देंगे, बल्कि उससे पहले अयूब खान जैसा शख्स आया। तो मैं ऐसी कोई तवक्को नहीं रखता,
आपको।
तवक्कोआत सियासतदानों ही से हैं, उन्हीं से ये पूरी भी होनी चाहिए। मैं तो ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि तवक्कोआत उस वक्त पैदा होती हैं जब सियासतदानों का कोई आदर्श, कोई नस्बोलैन, कोई उनके सामने हालात का इदराक और उसकी कोई तस्वीर सामने हो। यहाँ तो खौफजदगी के आलम में दिए गए बयान हैं जिनके अंदर कभी ये आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, ये उसका रास्ता रोक रहे हैं, वो रास्ता हमवार कर रहे हैं, इसके नतीजे में कौमें नहीं बनती।
पाकिस्तान में मार्शल लॉ का कोई खतरा है?
हर वक्त रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में नहीं है।
तो मौजूदा जो सियासी लोग हैं, इमरान खान का हमने जिक्र कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर लिया, और देख भी रहे हैं कि वो किधर चली गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, दोनों में से बेहतर कौन है?
दोनों के अपने अपने दायरे हैं जिनमें उनकी क़यादत काम करती रही है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख पर निगाह डालें तो दस्तूर बनाने में, दस्तूर में बाज़ तरामीम करने में, बाज़ और आइनी मसाइल को हल करने में पीपल्स पार्टी का बड़ा गैर मामूली किरदार है। इसी तरह हमारे मुल्क में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर हुआ है या एक कैपिटलिस्ट इकानमी के तरीके की बुनियाद पड़ती महसूस हुई है, वो आपको मुस्लिम लीग के इकदाम में ज़्यादा नज़र आती है। मेरा एहसास ये है कि हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं, इसमें तीनों कुव्वतों को किरदार अदा करना है, और जब तक तीनों मिल के किरदार अदा नहीं करेंगे,
तीनों सियासी कुव्वतों की बात कर रहे हैं
नहीं,
आप,
मेरा
मजहबी,
नजर
सियासी और फौजी?
यानी मजहबी लोग उस मसले को समझें और उसमें एक कौमी रियासत को उसकी हकीकी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। उनको मैं बता सकता हूँ फिर कि उनके मजहबी अफकार की सूरत क्या बनेगी उसमें।
लेकिन गांधी साहब, आप हुस्ने जन का ज्यादा मुजाहरा नहीं कर रहे? फौज जिसके पास पूरी ताकत है, आप ये चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिटिकल मेडलिंग छोड़ दे, वो क्यों छोड़े?
नहीं, मैं चाहता
उलमा
हूँ,
जी चाहना
मैं
तो ज़ाहिर
चाहता
है,
हूँ
ख्वाहिश तो
तो नहीं रखता।
को नहीं, ठीक है। और जो उलमाए कराम है, हमारी मजहबी जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनका पूरा वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, और आप वही तो करते हैं कि वो छोड़ दें, वो क्यों छोड़े?
देखिए, बात यह है कि मैं एक फिक्री आदमी हूँ और मेरा काम यही है कि मैं हकायक को बयान करूँ, अच्छी तवक्कोआत रखूँ, ये चाहूँ कि मेरी कौम आगे बढ़े।
अच्छा, ये चाहना या अच्छी तवक्कुर रखना जाहिर है एक अच्छी बात है। नतीजा क्या देखते हैं, पाकिस्तान इसी तरह रहेगा, टूट जाएगा, या कोई और शक्ल बनेगी?
नतायज बयान करने के दो तरीके होते हैं। एक तो बाज़ लोगों को इल्हाम होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं होता। एक दूसरा ये है कि आप ये महसूस करते हैं कि रोईदगी पैदा हो रही है, तो आप कहते हैं बाहर आ रही है। तो मुझे कोई इस तरह की रोईदगी क्या कोई घटा भी उठती हुई नज़र नहीं आती, अभी सूरत हाल यही है।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूटने की
नहीं, बेहतरी की,
बेहतरी की, अच्छा ठीक है,
मानी
तो इसका मतलब पाकिस्तान टूट जाएगा।
बाहर के आसार भी नज़र नहीं आते। मैं ये नहीं कहता, ना मेरी ये तमन्ना है, ना मैं कभी अपनी ज़ुबान से ये बात
नहीं,
निकालूंगा।
तमन्ना गांधी साहब एक अलग
मैं
इशू है ना,
तो हर
एक
वक्त अपने,
हार्ड कोर फैक्ट्स जो है, इंडेक्स जो इशारी जो बताते हैं वो बताइए।
यानी हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें समत यही है, लेकिन मेरे जैसे आदमी की तो दिली दुआएं ये हैं कि ये मुल्क सलामत रहे और ये कामयाब हो और इसमें एक दस्तूरी निज़ाम चले, इसमें जमहूरी अकदार को फ़रोग हासिल हो और ये तरक्की करे। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि ये किसी बुरे अंजाम को पहुँचे, ताहम आसार बुरे अंजाम की तरफ बढ़ने ही के।
बुरे अंजाम का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान टूटने की तरफ एक सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन इस आगाज़ में क्या हमने अपना रास्ता बदलने की कोई आसार नज़र आए हैं आपको, कोई बेहतरी किसी एक एक्टर की तरफ से जितने जिनके पास पावर
आप इतनी बुरी बातें क्यों सोचते हैं?
है?
यानी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर आज आसार नहीं भी हैं तो खुदा ने चाहा तो कल नमूदार हो जाएंगे। क्योंकि मेरा अपना एहसास है कि हमारी कौम में बहुत पोटेंशियल है। मैं आपसे सच अर्ज़ करता हूँ कि जितनी गैर मामूली ज़हानतें हमारी कौम में पैदा होती हैं, मुझे दुनिया को बहुत देखने का मौका मिला, कम होती हैं। हम उनको एक मुनज़्ज़म कुव्वत बना नहीं पाते, हम उनको इदारों में तब्दील नहीं कर पाते, हम उनको कोई अच्छा आदर्श दे नहीं पाते। तो अगर हम फैसला कर लें कि ये चंद चीज़ें हैं जिनको हमें अकदार के तौर पर सामने रखना है, और मुझे मिसाल के तौर पर एक दीनी पस मंज़र रखने वाले शख्स की हैसियत से, आपको एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक उस्ताद को अपनी हैसियत से, इन चीज़ों को लोगों के जहनों में रासिक करना है, तो मैं मुस्तकबिल से मायूस नहीं हूँ। मैंने जो बात अर्ज़ किया वो ये है कि एक है कौम का बिल्कुल क्या हाल है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो बहुत रोशन है, और एक है कि हमारे इस वक्त के इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, उसमें जुल्मत ही जुल्मत है। और मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि जुल्मतों के अंदर भी कहीं रोशनी देखते रहना चाहिए।
गांधी साहब, एक डॉक्टर को और एक आलमे दीन को बिटर ट्रुथ नहीं बताना चाहिए लोगों को, ठोस हकायक के साथ?
वो तो मैंने बता दिया आपको, यानी मैंने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में कि पैदाइशी अमराज लाहिक हैं, उनका अभी तक कोई इलाज नहीं किया जा रहा। जो इलाज करने की पोजीशन में है उनको इसका शऊर ही नहीं है, उन्होंने कभी इसको हदफ नहीं बनाया, वो आज भी इन चीज़ों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तशखीस तो मैंने कर दी, लेकिन ये कि अब मैं ये भी कहूँ कि ये मरीज़ लाजमन मर जाएगा, नहीं, मुझे अपने रब से बड़ी तवक्कुआत होती हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कब कहाँ से रोशनी नमूदार।
गांधी साहब, आखिरी दो मुख्तसर से सवाल और फिर बात हम ख़त्म करते हैं। गांधी साहब, हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में एक हुकूमत बनी है, आप समझते हैं कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक हुकूमत बनी है? वहाँ पर औरतों को जो हकूक नहीं दिए जा रहे, वो आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक इकदाम किए जा रहे हैं?
मैं तो पहले दिन से उन पर तनकीद कर रहा हूँ, मुझे उनके इखलास में कोई शुबा नहीं है, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से दोनों चीज़ें बहुत गलत हुई हैं। इस्लाम में हुकूमत का एक ही तरीका बताया गया है, और वो ये है कि कौम को फैसला करना है, अमरुहुम शूरा बैनहुम। ये अफ़गानिस्तान के अवाम का हक है कि वो फैसला करें कि उन पर किसको हुकूमत करनी है, उन्हें आज़ादाना तरीके से राय देने का मौका मिलना चाहिए। ये मौका उनको नहीं दिया गया, और जिस तरह हमारे यहाँ फौज बंदूक के ज़ोर पर कब्ज़ा कर लेती है, वहाँ एक जथे ने, मजहबी जथे ने बंदूक के ज़ोर पर कब्ज़ा कर लिया है। ये इस्लाम के भी खिलाफ़ है, ये जमहूरी अकदार के भी खिलाफ़ है, ये मौजूदा दुनिया के तसव्वुरात के भी खिलाफ़। दूसरा ये है कि इस्लाम शख्सी मामलात में किसी हुकूमत को मुदाखलत का हक नहीं देता। मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या तालीम पानी है, मुझे मौसीकी सुननी है या नहीं सुननी है, मुझे तस्वीर बनानी है या नहीं बनानी है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें मैं अपने रब के सामने जवाबदेह हूँ। ये तीनों हुकूमतें यही गलती करती रही हैं, पहले सऊदी अरब की हुकूमत ने कमोबेश 1.5 सदी तक, ईरान की हुकूमत अभी हाल में मुजाहिरीन से फारिग हुई है, वो भी शख्सी मामलात में मुदाखलत। ये हजरात भी इसी को अपना हुनर समझते हैं कि कभी औरतों के बारे में कि वो तालीम पाएंगी या नहीं पाएंगी, कभी आपके बारे में और मेरे बारे में कि हम पहनेंगे क्या और दाढ़ी कितनी रखेंगे, शख्सी मामलात में किसी हुकूमत को कोई एक चीज़ भी लोगों पर मुसल्लत करने का हक नहीं है। तो इसलिए मैं इसको एक मजहबी हुकूमत कहता हूँ, ये कोई इस्लामी हुकूमत।
आखिरी बात, सऊदी अरब में हम देख रहे हैं कि बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान ने बहुत मुनफरद नोयत के प्रोग्रेसिव इकदाम किए हैं। आपको उनके इकदाम को किस नज़र से देखते हैं, जो उन्होंने ख्वातीन को आज़ादी दी है और भी टूरिज्म के फ़रोग के लिए बहुत सारे काम किए हैं, वो काम किए हैं जो शायद गुज़िश्ता कई दहाइयों में बल्कि एक मुंजमद सोसाइटी में पहली दफ़ा किए जा रहे हैं।
हर सोसाइटी के अंदर जो तबकात हुकूमत कर रहे होते हैं वो किसी दुनिया से अलग होकर गार में नहीं बैठे होते। ये आपके इल्म में है कि वहाँ एक शहजादों की फ़ौज ज़फ़र मौज है, उनमें से बहुत से लोगों ने बाहर तालीम पाई है। कुछ शाही ख़ानदान और वहाँ का इक्तदार में हिस्सा रखने वाले तबकात भी जहाँ तहाँ से पढ़ पढ़ा के गए हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर कुछ अफकार को पैदा करने का बायस बनी हैं और बाज़ चीज़ों के मामले में बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। वही बात कि जो शख्सी मामलात की मुदाखलत है वो कमतर हुई है, लेकिन क्या जमहूरियत की तरफ, जमहूरी आज़ादियों की तरफ, एक आइनी हुकूमत की तरफ जैसे कि बरतानिया में है कोई कदम उठाया गया है? मेरा ख्याल है कि अभी इस मामले में कोई एक चीज़ भी हमें नज़र नहीं आ
क्या
रही।
पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लिया जाना कर लेना चाहिए?
मेरा तो ख्याल है कि 1948 में जब इसराइल वजूद में आया था उसी वक्त तस्लीम कर लेना चाहिए था तमाम मुसलमान मुल्कों को। जब दुनिया में इस तरह की हकीकतें वजूद में आ जाती हैं तो उनसे सर मारने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो काम जो उस वक्त हो जाता तो शायद फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हुआ है उसको हम रोक सकते, और इसराइल जितना बनाया गया था अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद से वो उससे कहीं बड़ा हो चुका है। यरूशलम उस वक्त खुला शहर था, अब उस तरह नहीं रहा बल्कि वो उसको अपना दारुल हुकूमत बना रहे हैं। तो हमने तस्लीम न करके बहुत कुछ खोया है, पाया कुछ भी नहीं।
तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल तस्लीम ना करने की राह में बड़ी रुकावट पाकिस्तान की फौज है या पाकिस्तान की मजहबी तबकात है?
मुसलमानों का जज्बाती पस मंज़र, मुसलमान हकायक को आसानी के साथ तस्लीम नहीं करते। याद करें जब बांग्लादेश बन गया था तो अगर भुट्टो साहब जैसा लीडर ना होता तो मेरा ख्याल है कि हम इसी कश्मकश से अब तक गुजर रहे होते। ये हिम्मत थी उनकी कि उन्होंने आगे बढ़ के उसको तस्लीम कर लिया। सियासी हकीकतें जब वजूद में आ जाती हैं तो वहाँ जेर बहस ये नहीं होता कि ये जायज़ है या नाजायज़। नहीं, वैसे तो मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, उसके साथ हमारा एक बड़ा जज्बाती ताल्लुक था, लेकिन जब एक वाक़या हो गया तो फिर उसका तरीका यही है कि आप आगे बढ़िए, उसको तस्लीम करके जो कुछ हासिल कर सकते हैं उसको खोने से अपने आप को बचाइए।
कश्मीर के हवाले से भी भारत के तनाजर में हमारा एक रवायती मौक़िफ़ है कि हम कश्मीर की बात लाजमी करेंगे, तभी भारत के साथ ट्रेड खुलेगी और तभी मामलात आगे बढ़ेंगे। तो इसके ऊपर हमें आपकी राय क्या है कि हमें पाकिस्तान ने रियासत ने अगर आगे बढ़ना है तो क्या भारत के साथ ट्रेड शुरू कर लें और कश्मीर का मामला पीछे रख दें या ये साथ साथ चलें?
तजारत बंद करने की कभी भी कोई वजह नहीं थी, ताल्लुकात होने चाहिए, आप जाएं आएं, इल्म का तबादला हो। इसी तरह तजारत भी एक तबादला है ना, उनका माल आ रहा है आपका माल आ रहा है, बाकी सियासी इख्तलाफात कौमों में होते हैं उन पर अलग से बात करनी चाहिए। और सियासी इख्तलाफात के भी दो पहलू हैं, यानी इस बात का हकीकत पसंदाना जायज़ा लेना चाहिए कि क्या अब तकसीम के हवाले से इस मसले का कोई हल है। मेरी राय है कि ऐसा नहीं, अब पुलों के नीचे बहुत सा पानी गुजर चुका है और हमने वहाँ तखरीब कर कारी करके अपने मौकिफ को बेपना नुकसान पहुँचाया है और कश्मीरियों को भी बड़ा नुकसान पहुँचाया है। अगर कश्मीर का कोई मुस्तकबल एक आज़ाद रियासत के तौर पर है तो वो फैसला कश्मीरी आवाम को करना है। वो अगर सियासी जद्दोजहद करें तो जाहिर है कि हर कौम का हक है, वो अपने लिए हक के खुद इरादी का मुतालबा कर सकती है, अलहदगी का मुतालबा कर सकती है, उसमें हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन किस तरह का साथ, यानी लोग भर्ती करके, जंग करके, बम चलाकर, वहाँ के हालात को ख़राब करके सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर। तो यही सही तरीका है, तो ये फैसला कश्मीरियों को करना है। अगर उनकी क़यादत ये कहती है कि हमें अलहदगी चाहिए, तो उनके लिए भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सही रास्ता ये है कि वो वहाँ के सियासी अमल में हिस्सा लें। और जिस तरह आपके इल्म में है कि स्कॉटलैंड में ये रेफरेंडम तक नौबत पहुंचा दी गई, उसी की जिद्दत करें। लोग सियासत का रास्ता छोड़ते हैं, उनका अंजाम वही होता है जो 9 मई को हुआ।
गांधी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मेहरबानी की। नाज़रीन, आपने गांधी साहब की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।